Nirvanaya Prashantaya में सो दिव्य वर्षों तक तपस्या की और उसको बहुत सी शक्ति प्राप्त हो गई और उसने ब्रह्मा जी से तरह तरह के वरदान प्राप्त कर लिए, जिसने उसने एश्योर कर लिया कि मैं अमर हो जाऊंगा। और अपनी शक्तियों से उसने प्रकृति के सारे नियमों को बदल दिया, जितने भी देवता थे उनको अपने वश में कर लिया। जब वो चाहता था वर्षा होती थी, जब वो चाहता था सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, सभी देवता उसके यहाँ नौकरी करते थे उसके, ब्रह्मा विष्णु और शिव को छोड़कर, इतना शक्तिशाली। फिर भी जब सारे देवता अंतक में आ गए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको एश्योरेंस दिया कि जब भी कोई देवताओं से, ब्राह्मणों से, गायों से, वेदों से या मुझसे ईर्ष्या करता है, वह और उसकी सारी सभ्यता भी नष्ट हो जाती है। और फिर भगवान ने देवताओं को बताया कि इस श्लोक में निर्वराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, कि मैं इसका वध करूंगा, हनिष्य अपि मैं इसका वध कर दूंगा, चाहे कि इसको वरोचितम, हालांकि ब्रह्मा जी ने इसको कई वरदान दिए हैं, तब भी मैं इसका वध कर दूंगा। क्यों? जब ये अपने ही पुत्र स्वसुताय, अपने ही पुत्र प्रहलाद को तंग करेगा, प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं टीज करेगा प्रहलाद महाराज को, बड़ा अच्छा वर्ड है, सताने का मतलब तो हैरास हो गए, हिंदी में सताना लिखा है, सताना नहीं, सताना तो की बात है, टीज भी जब करेगा, छेड़ेगा, तो जब प्रहलाद महाराज को छेड़ेगा तो मैं इसको वध कर दूंगा, फिर मुझसे सहन नहीं होगा। क्यों? प्रहलाद महाराज के तीन अंदर तीन गुण है, निर्वैर, उनका कोई शत्रु नहीं है, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, प्रशांत है, बहुत ही गंभीर और धीर है, और महात्मा ने महान भक्त है। ऐसे प्रहलाद को जो कि उनका पुत्र है हिरण्यकश्यप का, लेकिन महान भक्त है, बहुत ही शांत और गंभीर है, और साथ में जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो किसी से शत्रुता मोल नहीं लेता, ऐसे भक्त को जो तंग करेगा, उसको सताएगा, तो मैं उसका वध कर दूंगा, हालांकि उसको ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत शिक्षाप्रद है। तो वैष्णव व्रत के विषय में हम बहुत बारी सुन चुके हैं, बहुत बारी बोल चुके हैं, बहुत बारी पढ़ चुके हैं, बहुत सी कथाएं हैं चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम में, हर जगह सुबह रोज दस अपराधों के विषय में चर्चा करते हैं। इतना हो गया कि अब ये बात हम पे असर ही नहीं करती। मैं ये सोच रहा था टॉपिक है क्या, कितनी बारी तो बोल चुके हैं वैष्णव अपराध के बारे में कि आप महान और नर्क में जाओगे, अगले जन्म में मल खाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, आएंगे भाई उतने अपराध मैं करता हूँ, कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं, तो क्या किया जाए, ऐसा क्यों होता है? तो काफी सोचा था, फिर मुझे ध्यान आया कि कलयुग का लक्षण है। कलयुग में बताया गया मंद सुमंद मध्य मंद भाग्य ही गोपता। कलयुग में हम लोग इतने स्वस्थ हैं कि जो शास्त्रों के निर्देश हैं, जो गुरु के वाक्य हैं, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत सुस्त है। हो जाएगा, कभी भी कर लेंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं अच्छा जप कर लूंगा, एक दिन तो ऐसा आएगा जब भक्तों से मेरे अच्छे संबंध हो जाएंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो जो अच्छे कार्य होते हैं वो शास्त्रों में बताएगा शुभ से शीघ्र, और हम बोलते हैं इतनी शीघ्र की आवश्यकता क्या है, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, लेकिन वो भविष्य कभी नहीं आएगा, वो भविष्य तुरंत ही वर्तमान बन जाएगा, और जो वर्तमान में हमारा एटीट्यूड है वैसा ही रहेगा। तो कभी भी कोई ब्राइट फ्यूचर, उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं रहेगी जब तक हमारा वर्तमान उज्ज्वल नहीं होगा। तो इसी क्षण, दिस मोमेंट शुड बी मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसी क्षण मुझे अच्छा जप करना है, इसी क्षण आज ही अभी इसी वक्त मुझे भक्तों से अच्छे संबंध करने हैं, आज ही इसी वक्त मुझे भक्तों की सारी गलतियों को माफ कर देना है, आज इसी वक्त ही मुझे द्वेष से मुक्त होना है, मुझे ऐसा व्यवहार करना है मेरे कोई द्वेष भी नहीं है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, बहुत अच्छा जप करना है, बहुत उत्साह से सेवा करनी है, अभी से इसी क्षण से जब मैं इसका प्रयास करूंगा तभी जाके मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा। नहीं सुने तो मुझे तो थ्योरी तो बहुत सुनी है हमने और बहुत बोली भी है, आप में से कितने भक्तों को मैं आज यहाँ बिठा दूंगा अपनी जगह पे, बहुत अच्छा प्रवचन देंगे सभी, वैष्णव अपराध के विषय में कौन नहीं बोल सकता, प्रैक्टिस है खुद को क्यों नहीं बोल सकते हम, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इस जो डालने की आदत है प्रोकास्टिनेशन की, कलयुग में जो सबसे बड़ा दुर्गुण है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। दुर्देव विद शमिया जन अनुरागा, भगवान तो इतनी कृपा की है लेकिन अपने हृदय की कमजोरी, अपने अर्थों के कारण हरि नाम को सही ढंग से जप नहीं कर पा रहा, मैं वैष्णव से रति उत्पन्न नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी से मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो इस मानसिकता के साथ हम कृपया करके इस आज के इस चर्चा को करेंगे। और श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में एक जीव को, लिविंग एंटिटी को स्वदृक् बताया गया है। स्वदृक् का अर्थ है जो अपने भले को देख सकता है, वन हू कैन सी हिज ओन वेलफेयर, जो अपने भले के बारे में सोच सकता है और अपने भलाई को देख सकता है और उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। तो हम सब भक्त हैं, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक है। प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने इसकी तुलना पागल हाथी के साथ की है। अब हम लोग दिल्ली के रहने वाले शहरी लोग हैं, हमने हाथी को पागल होते कभी देखा ही नहीं होगा। जहाँ से हाथी को सर्कस में देखा और सर्कस में तो बड़ा प्रणाम कर रहा होता है, सब कुछ पानी फेंक रहा होता है, फूल डाल रहा होता है, तो पागल हाथी हमने देखा नहीं होगा। नहीं, एकदम सिनेमा में, मूवीज में देखा था, जब हाथी पागल होता है गाँव में घुसता तो गाँव का तहश नहश कर देता है, और यहाँ भी बता रहे बगीचे में घुसा सारे पेड़ों को मार देता है, उठा उखाड़ के फेंक देता है। तो अभी भी हम देखा नहीं है, तो जब तक विजुअल इफेक्ट ना हो हमारे अंदर इंप्रेशन नहीं पड़ता है ना। जैसे कुछ लोग अभी रसीगुल वगैरह पूरी में गए थे, जगन्नाथपुर में फियालन तूफान आ रहा था, तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे, उसकी कल्पना कर सकते हैं ऐसा कुछ तूफान बवंडर आएगा। तो हमारी जो भक्ति लता छोटी सी बेचारी कोमल सी अगर बीच से थोड़ी सी अंकुरित हो रही है, हाथी अगर आगे हो तो उसको रोंद के चला जाए। तो वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है। और इस तात्पर्य के पहले ही वाक्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, समस्त पापों से सबसे कठिन पाप है शुद्ध भक्त या वैष्णव के प्रति अपराध। मोस्ट हीनियस क्राइम, सबसे बड़ा पाप है वैष्णव के प्रति अपराध, सबसे बड़ा पाप। अब कितने पाप हो सकते हैं, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़े पाप चार महापाप तो हम जानते हैं, मांस भक्षण करना, मदिरा पार करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, ये भी कोई कर ले उससे भी बड़ा सीरियस है वैष्णव अपराध। अपने माता पिता की हत्या करना, गौ की हत्या करना, देशद्रोही करना, देश के न्यूक्लियर बम के सीक्रेट को पाकिस्तान को दे देना, और क्या कर सकते हैं, गंदे से गंदा पाप कोई क्यों ना कर ले उससे ज्यादा खतरनाक है वैष्णव अपराध, इतना गंभीर है। क्योंकि पाप करने से हमारी भक्ति करने की योग्यता समाप्त नहीं होती। एक पापी व्यक्ति को भी भक्ति करने का अधिकार है, पापी से पापी व्यक्ति को भी। इसका उदाहरण कौन है, जगह ही बताइए। लेकिन अपराधी को बहुत मुश्किल। अपराध शब्द का अर्थ है अपराध, अब का मतलब है बिना या अगेंस्ट, उसके विरोध में, और राधा का अर्थ है सफलता, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता, या श्रीमती राधा रानी। यानी कि अपराध करने का अर्थ है श्रीमती राधा रानी की इच्छाओं के विरुद्ध जाना, श्रीमती राधा रानी की कृपा के विरुद्ध जाना, या बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के, या बिना श्रीमती राधा रानी के, बिना सफलता के, बिना समृद्धि के, अपराध। अपने आप में बड़ा अशुभ शब्द है अपराध, ये क्राइम शब्द नहीं है, जगह में क्राइम को भी अपराध कहते हैं। अपराध है ये हमारे भक्ति करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। अपराध से हम केवल सेवा से ही दूर नहीं होते, बल्कि अपराध करने से हमारी सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो ढक जाती है, सेवा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए सबसे खतरनाक ये पाप है, सबसे खतरनाक। कोई व्यभिचार भी कर ले, अपने पति या पत्नी को धोखा देकर पर पुरुष पर स्त्री का संग भी कर ले, तब भी वो राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकता है। एक वैष्णव अपराध कर लेगा तो वह राधा रानी कृपा से वंचित हो जाएगा। ये वैष्णव अपराध छह प्रकार के बताए गए स्कंद पुराण में। हन्ति निंदन्ति वा द्वेष्टि वैष्णवानापि निंदति कृते याति नो हर्षम दर्शने पतन्ति शुद्धा। कैसे वैष्णव अपराध, जो कि व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक है, व्यभिचार से भी ज्यादा गंभीर है। हन्ति, किसी वैष्णव की हत्या कर देना, करना नहीं। निंदन्ति, उसकी निंदा करना। द्वेषति, उसके प्रति द्वेष बना के रखना। एक द्वेष रखना किसी मन में, किसी वैष्णव के प्रति मन में द्वेष रखना, बड़े से बड़े पाप से भी खतरनाक है। वैष्णव नाम ना भी निंदती, वैष्णव को देख कर प्रणाम ना करना, माँ बाप की हत्या से भी ज्यादा खतरनाक है एक वैष्णव को देख कर प्रणाम ना करना। क्रोधते, किसी पे क्रोध करना किसी वैष्णव पे। ना हर्षम दर्शते, देख कर हंसना भी, मुंह बना के रहना, उधर मुंह कर लेना, उधर मुंह कर लेना, गुस्सा दिलाना, देख के हंसे नहीं, प्रसन्न नहीं हुए किसी वैष्णव को देखकर, वो नहीं। तो इससे क्या होगा, अतंति शत स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि अपने फोर फादर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ व्यक्ति नर्क में चला जाता है। भक्ति करते हैं, बताया जाता है खुद का भी उद्धार होता है और पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है, और भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। प्राचीन भरी भागवत चौथे स्कंद में आया, बड़े पशुओं की हत्या करके यज्ञ कर रहे थे, नारद मुनि को, नारद मुनि को उन पर दया आ गई। कैसे वो नारद मुनि की दया को आकर्षित कर सके? क्योंकि वो ध्रुव महाराज के खानदान में थे, ध्रुव महाराज उनके प्रिय भक्त थे, उन्हीं की वंश परंपरा में प्रणाली में प्राचीन परिषद आ रहे थे। तो नारद मुनि ने सोचा ये मेरा कर्तव्य है इसको बचाना, उस पर उन्होंने कृपा दिखाई क्योंकि मेरे भक्त के कुल में। इसी ढंग से भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आगे आने वाली पीढ़ी और पीछे वाली पीढ़ी का उद्धार कर देगी। तो इसी ढंग से इतनी खतरनाक भी है ये, अगर भक्तों के बीच में हमने सही व्यवहार नहीं किया कि पूर्वजों के साथ हम नरक में जाएंगे। जब ऐसी बात कोई सुनेगा बोले भैया नहीं, इन भक्तों के पास नहीं आना भैया, बहुत खतरनाक है ये लोग, तो वही रहेंगे आराम से कर्मकांड नहीं करेंगे, पूर्वजों का तो उद्धार होगा, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए भक्ति करने के लिए थोड़ा बहुत फियर, डर की आवश्यकता तो है, इसको बोलते हैं हेल्दी फियर। देखिए इतना भी डर नहीं जाना कि भक्तों के संग से दूर भागना, भक्तों को देखते दूर भागो, वैसा भी नहीं, थोड़ा बहुत डर हमेशा बना रहना चाहिए, इससे हम बहुत गंभीर रहते हैं, भक्तों के प्रति व्यवहार करते हैं। तो ये बता रहे थे कि ये भक्ति प्रभुपाद जो पहले सेंटेंस में लिख रहे हैं कि पापों से कितना खतरनाक है। पाप करते समय अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको मौका देती है कोर्ट की कोई जस्टिफिकेशन हो, डिफेंस काउंसिल, आप डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं, तो व्यक्ति बोल सकता है इस व्यक्ति ने मुझ पर आक्रमण किया, अपने बचाव के लिए मैंने इसका मर्डर कर दिया, तो कोर्ट इसको कंसीडर कर दिया अपने डेथ सेल्फ डिफेंस में, कोई जस्टिफिकेशन है अगर पाप करने का तो उसको माफ भी किया जाता है। लेकिन अपराध करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, प्रभु क्या करूं इसने मुझे थप्पड़ मार दिया मैंने खून लगा दिया, फिर क्या करूं, मेरी बुराई कर रहा था मेरी बुराई कर रहा था, मेरी इज्जत को बिना सब जगह मेरी बेइज्जती कर रहा था, मैंने भी खूब सुना दिया उसको, मैंने भी खूब बुराई की। अपराध का बदला हम अपराध से नहीं दे सकते, अपराध सेल्फ डिफेंस में कोई अपराध नहीं होता। रामचंद्र कुल ने चैतन्य महाप्रभु को कितना क्रिटिसाइज किया, चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द नहीं बोला। श्रृंगी जो कि शमक ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया छोटी सी चीज के लिए, परीक्षित महाराज ने दोबारा उसका बदला नहीं दिया। तो अपराध के बदले से हम अपराध नहीं कर सकते, अपराध के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा, अपराध में जैसे हम नॉर्मल कोई क्राइम होता है तो हम इंटेंशन भी देखते हैं, देखी जाती नहीं देखी जाती। एक मर्डर किसने कर दिया उसमें इंटेंशन नहीं थी, या किसी से एक्सीडेंट हो गया गलती से हो गया इंटेंशन नहीं थी, तो जज उसको कंसीडर करता है कि ठीक है इंटेंशन को देखना चाहिए। तो आप क्या कहना है, वैष्णव अपराध के लिए किसी इंटेंशन को देखा जाएगा? नॉर्मली देखा जाता है कि ठीक है एनवियस मेंटेलिटी के साथ नहीं कर रहा, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी अपने ही गुरु भाइयों को क्रिटिसाइज करते थे अपने शिष्यों के सामने, तो देखने में तो अपराध है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या थी, अपने शिष्यों को ट्रेन करना, उनको बचाना, कहीं वो डेविएट ना हो जाए, कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए उनको बताते थे उनकी फिलॉसफी में, उनके प्रचार के तरीके में क्या फॉल्ट्स हैं, कैसे वो अपने गुरु के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे, तो क्रिटिसाइज किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने एक बार एक लेक्चर देके आ रहे थे, खूब मायावादी की उसकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, तो जब टैक्सी में बैठे थे उनके शिष्य ने बोला प्रभुपाद कमाल कर दिया आपने, क्या उसकी धज्जियां उड़ा दी, पानी पानी हो गया वो। प्रभुपाद ने बोला आई कैन डू इट, यू कैन नेवर डू इट, एंड नेवर डू इट। प्रभुपाद साइंटिस्ट खुरासकर बोलते थे, मायावादी से क्रिटिसाइज करते थे, ये करुणावश था, हम लोग करेंगे तो हम द्वेषवश करेंगे, तो बढ़ाया बड़े स्टेज पे घूमता था, बड़े टीवी में लेक्चर देता था, मालूम चल गया ना ना हमारे अंदर द्वेष होता है, वो कृपा की हमारे अंदर करुणा नहीं है, तो हम लोग नहीं कर सकते क्रिटिसाइज। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपराध करें और बोले मेरी इंटेंशन ठीक थी, मैं तो आपको सुधारना चाहता था। बहुत सावधान रहना चाहिए, कोई ऐसा उदाहरण है कि अनइंटेंशनली किसी कोई वैष्णव नाराज हो गया हो और उसको उसका फल मिला हो? रूप गोस्वामी जी जब लीला स्मरण कर रहे थे तो सामने से एक वैष्णव गुजरे जो कि लंग रहे थे, तो रूप गोस्वामी तो लीला स्मरण करते करते हंस रहे थे, लेकिन वो जब वैष्णव तो सोचा कि मेरी हंसी उड़ा रहे, फिर उनका लीला स्मरण भंग हो गया। इसी ढंग से देखते हैं अक्रूर कंस के निर्देश पर कृष्ण बलराम को जब ले गए वृंदावन से मथुरा, तो अपने आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन गोपियां उनसे बहुत नाराज हो गई, गोपियां रो रही थी, गोपियों के हृदय में बहुत चोट पहुंची, आघात हुआ। तो इसका परिणाम अक्रूर को मिला, सम्यक मणि के चक्कर में अक्रूर जी भी फंसे उस कॉन्स्पिरेसी में और उनको वाराणसी में जाकर छिपना पड़ा। इसलिए जो लोग मैनेजमेंट करते हैं खासकर, वो कहते हैं मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, कोई नाराज हो तो मैं क्या करूँ। नहीं, एटलीस्ट भक्तों के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। किसी के प्रति हम एक्शन ले भी रहे हैं तो उसको उसकी भावनाओं की हमें अवश्य उसका आदर करना चाहिए। भक्ति रत्नाकर में आता है, जब सनातन गोस्वामी एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाते थे तो सभी गांव वाले उनके पीछे पीछे आ जाते थे, और जब सनातन गोस्वामी दूसरे गांव में जा रहे थे वो रोते थे, तो सनातन गोस्वामी ये नहीं कहते थे मैं तो जिसे कहते हैं एकदम वैरागी व्यक्ति हूँ, मुझे क्या लेना देना, चुपचाप चले जाते थे। नहीं, वो सारे गांव वालों को उनको दिलासा दिलाते थे, उनको चुप कराते फिर आगे बढ़ते थे। तो वैष्णव का हृदय इतना कोमल होना चाहिए, किसी को भी आघात नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अपने मैनेजमेंट के लिए या पूरे मिशन को देखते हुए कुछ करना भी पड़ता है। तो जो जो भक्त हो बीच में उसके जिसके प्रति उनको एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए बड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए, इंटेंशन जैसे भी हो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वैष्णव अपना बहुत ही हम सब भक्तों के लिए बहुत हमें बहुत सावधानी से जीवन आगे बढ़ना चाहिए। इसके कई प्रभाव बताए गए हैं। श्री राजीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ बताते हैं कि अपराध करने से क्या होता है, हमारी भक्ति में कपटता आ जाती है, कपटी हो जाते हैं हम। भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, लेकिन भक्ति हम किसी और उद्देश्य से करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, अपराध करने से श्रद्धा में कमी होती है, गुरु में, शास्त्रों में, भगवान में, वैष्णवों में श्रद्धा की कमी आना शुरू हो जाती है। तीसरा, असत तृष्णा, ऐसे भक्तियों से तृष्णा हो जाती है, आसक्ति हो जाती है जो भक्ति के विरोध में है। चौथा, साधना में ढीलापन, नियमों के पालन करने में ढीलापन, मंगल आरती थोड़ा लेट आना शुरू हो गए, जप में थोड़ा उठ के चले गए, थोड़ा थोड़ा ढीलापन, आज की माला कल कर लेंगे, नियमों में और ढीलापन, पहले सब्जेक्ट से धीरे धीरे ढीलापन आ रहा है, अपराधों का परिणाम है। और पांचवा, जो हमारी भक्ति में अचीवमेंट्स होती हैं उसके में उसमें बहुत गर्व आ जाना, तो देखो मैंने क्या कर दिया, क्या करके दिखाया, ये अपराध के पांच लक्षण बताए गए। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में के चौथे अध्याय के 46 श्लोक में जब राजा कंस के अत्याचार का वर्णन हुआ है श्री राधा राधिका रमन जी की, तो उसमें बताया गया है, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशीष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रम। ध्यान से सुनिए, अपराध करने से क्या क्या होता है। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घ आयु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर विनिष्ट हो जाते हैं। जब हम अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, तीर्थ आयु, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था हिरण्यकश्यप को, लगभग अमर हो गया था, सब नष्ट, सब खत्म। सौंदर्य, हम देखते हैं दक्ष प्रजापति जब वो सभा में प्रवेश किया था तो इतना चमक रहा था जैसे सूर्य का तेज हो, और उसने किसके प्रति अपराध किया, शिवजी के प्रति। शिव जी के प्रति अपराध किया तो शिव जी के पार्षद ने उसके यज्ञ में आके ध्वंस कर दिया, उसको मार धाड़ कर दी और दक्ष का भी सर काट दिया। फिर दक्ष ने वह प्रार्थना की जब, तो फिर उसको किसका सर मिला, बकरे का। कहाँ इतना सुंदर व्यक्ति था और कहाँ बकरे का सर आ गया, देखो है ना, सारा सौंदर्य समाप्त। और देखिए भक्तों के समाज में देखते हैं, जैसे कोई भक्त निंदा करनी या निंदा सुननी शुरू करता है उसका पूरा जो फेस का कलर है सारा चेंज हो जाता है, देखा आपने कभी ऐसे। और अगर भक्त बहुत अच्छा जप कर रहा है तो जब अपने आप को हम दर्पण में देखते हैं लगता है वाह, ऐसे वो किसी ब्यूटी पार्लर से होके आया हो, एक तेज होता है चेहरे। इसलिए जब शुद्ध वैष्णव होते हैं वो चेहरा पर भी बोलते हैं प्रभु जी कैसा जप चल रहा है, पहचान जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक पूरा का पूरा जो ऑरा होता है, एक ब्लैकिश तमोगुणी ऑरा हो जाता है, एक नेगेटिविटी होती है पूरे ऑरा में। जब हम बहुत गुणगान कर रहे हैं, संकीर्तन से आते हैं रथ यात्रा में, संकीर्तन खूब किया, खूब खूब पुस्तक वितरण किया, खूब गुणगान किया, तो हम देखते हैं हालांकि शारीरिक रूप से हम थके होंगे लेकिन और एक अलग होगा, उत्साह एक अलग होता है, तो सौंदर्य में कमी आती है। यश, जितना नाम कमाया था सब फिनिश। कोई बोल सकता है कि जैसे कोई उदाहरण है जिसका यश समाप्त हो गया? इंद्र, इंद्र ने बृहस्पति की पति किया, सुअर बनना पड़ा। इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और कोई सन्यासी भी किसी की निंदा करता है तो उसको अपने पद से गिरना पड़ता है। कोई बोल सकता है अगर किसी ने वास्तव में कोई गलती किया तो कहना नहीं चाहिए क्या? सारे नियम तोड़ दिए इन्होंने, व्यभिचार किया, इसके बारे में बात नहीं करें क्या? इतनी वैष्णव के समाज में इतनी गलती की। तो सीधा स्वामी बताते हैं निंदनम दोष कीर्तनम, निंदा करने का अर्थ है दोष का कीर्तन करना। इस कीर्तन को करना और सुनना दोनों ही हानिकारक है। जैसे कि ब्रह्मा जी के 6 पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मरीचि के 6 पुत्र थे, उन्होंने क्या देखा, उनके दादाजी ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने ही बेटे के पीछे भागने लगे कामवश, तो हंसने लगे, देखो देखो इस सृष्टि के करता है क्या हालत हो गई है, अपने काम पे वश नहीं कर पाए, मजाक उड़ाया, बिल्कुल सच बात थी, ब्रह्मा जी को ऐसे करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मरीचि के 6 पुत्रों ने ऐसा किया, इसको ये वैष्णव अपराध लिया गया। और बाद में उनको क्या इसका फल मिला, असुर कुल में उनका जन्म हुआ और बोला गया कि बाद में इन्हीं के माँ के भाई के द्वारा इनकी हत्या की जाएगी, बाद में कंस के द्वारा देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया और कंस के द्वारा उनकी हत्या हुई। तो इस जन्म से यश में कमी होती है। धर्म, आशीर्वाद, जितना भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है सबका सब समाप्त, जो भी तपस्या का फल है सब फिनिश। हिरण्यकश्यप ने 36,000 सालों तक तपस्या की, इतनी भीष्म तपस्या, उसका पूरा शरीर चींटियों का पहाड़ बन गया, ऐसी तपस्या, और क्या क्या उसको वर प्राप्त हुए थे, सब के सब समाप्त। हम जो मर्जी कार्तिक का व्रत रख ले, चतुर्मास का व्रत रख ले, निर्जला एकादशी कर ले, गोवर्धन परिक्रमा कर ले, दंडवती परिक्रमा कर ले, बड़े बड़े तपस्या कर ले, लेकिन उसके बाद वैष्णव निंदा करते हैं, सुनते हैं, अपराध करते हैं, फिनिश, कोई उसका परिणाम नहीं है। बड़े से बड़ा आशीर्वाद क्यों ना प्राप्त हो, वैष्णव अपराध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा उपहार मिलता है कि हमारे कृष्ण की सेवा के प्रति थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसको प्रभुपाद कहते हैं अनुपम भेंट, मैचलेस गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट कहीं नहीं मिलेगा कि हमारे एक बद जीव की, जो कि भोगने की प्रवृत्ति में था, उसके अंदर कृष्ण की सेवा के प्रति थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हुई और उसने वैष्णव प्राप्त करना शुरू कर दिए, तो ये मैचलेस गिफ्ट या अनुपम भेंट छीन लिया जाता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता था किसी मनुष्य को, लेकिन वो भी हमसे समाप्त हो जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये इसके परिणाम है, ये हमें, ये विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, लेकिन कलयुग में हम लोगों की बुद्धि इतनी स्थूल है कि हमें फर्क नहीं पड़ता। ये नियम है, इतने सूक्ष्म नियम है, अपनी बुद्धि के द्वारा इसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो अब थोड़ा समय कम है, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, थोड़ा आगे चलेंगे कि क्यों होते हैं हमसे वैष्णव अपराध और इसकी रेमेडी क्या है। तो वास्तव में भक्तों के प्रति ये दुर्व्यवहार करना ये आसुरी स्वभाव है, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने कहा। और श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय में देवी तथा आसुरी गुणों का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है। तो 16 अध्याय के 4वें श्लोक में बताया गया है दंभो दर्प विमानश्च क्रोधापारुषमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संपदिमासुरिं। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो जो अपराध करने की प्रवृत्ति यहां से शुरू होती है, सबसे पहले दंभ, अहंकार। दम का मतलब है कि हम वो दिखाते हैं जो हम हैं नहीं, तो ये एक सटल रूप में है, सूक्ष्म रूप में, प्राइड। और उसके बाद है, उसके बाद दर्प, घमंड, ये थोड़ा सा स्थूल हुआ। जब किसी को घमंड होता है, पहले तो वो दम के कारण अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, मेरे जैसा कोई नहीं, और उसको बनाए रखना चाहता है इस स्टेटस को। हमारे जो मन और बुद्धि है इनका केवल एक ही कार्य है कि हमारे झूठे अहंकार की सेवा करते हैं। माइंड एंड इंटेलिजेंस ओनली सर्व द फॉल्स ईगो, इसको नरिश करते हैं। और झूठे अहंकार के कारण हम अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, ये दंभ है। जो हम है नहीं वो अपने आप को ऐसा समझते हैं। ये सूक्ष्म रूप में इस कट से थोड़ा सा स्थूल होता है दर्द, जब घमंड, जब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं तो हम समझते हैं सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरे जैसा मृदंग प्लेयर, मेरे जैसा प्रवचन करने वाला, मेरे जैसा पुजारी, मेरे जैसा को कौन हो सकता है, सबको मेरे को आदर देना चाहिए। और जब, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है, मैं भी ये सोच रहा हूँ, ये भी ये सोच रहे, और मैं चाहता हूँ ये मुझे आदर दे, ये चाहते मैं इनको आदर दूँ, कोई दूसरे को आदर देगा नहीं तो क्या आएगा, क्रोध, बहुत क्रोध आएगा। हिम्मत तो देखो, कोई मुझे आदर ही नहीं कर रहा। जिसको अंदर से दम होता है उसको पूरा का पूरा भौतिक जगत बहुत हॉस्टाइल लगता है, एग्रेसिव लगता है कि सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्या चक्कर क्या है, सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जिसकी चिंता उतनी उत्कृष्ट होगी उसको यही वातावरण बहुत फ्रेंडली लगेगा कि सब देखो कितनी मेरी मदद कर रहे हैं। और जब हमारी चिंता दूषित होती है सबके सब मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं तो उसको बहुत क्रोध आता है कि ये कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई मेरे को जानता नहीं मैं कितना महान हूं। और जब क्रोध आता है, बोला गया है एंगर इज वन वर्ड शॉर्ट ऑफ डेंजर, इसमें एक डी ऐड होता है, और डी तब होता है जब हम डिग्रेड हो जाते हैं, जब हम तमोगुण रजोगुण में फंस जाते हैं तो डिग्रेड हो जाते हैं क्रोध। और क्रोध में क्या कहते हैं, पारुष्य, हार्शनेस, प्रवर्तन हार्शनेस, यहां लिखा गया कठोरता, हार्श वर्ड यूज करते हैं, कठोर शब्द और कठोरता के साथ व्यवहार, तीखे शब्द तीखा व्यवहार, तो फिर होते हैं अपराध। ये उसका स्थूल तम, ग्रॉसेस मैनिफेस्टेशन है हमारे दम का, प्राइड का। क्या पहले दम है, फिर दर्प है, फिर क्रोध है, फिर पारुष्य, क्रोध कठोरता के शब्द, कठोरता पूर्ण व्यवहार, हार्शनेस इन डीलिंग्स, तो ये उससे क्या होता है, अपराध होता है। और इस दंभ का कारण क्या है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। क्योंकि भगवद्गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में ज्ञान के कितने लक्षण बताए गए हैं, 20 गुण बताए गए हैं। पहला गुण क्या बताया गया, अमानित्वम अदम्भित्व, मान की इच्छा रखना, दम्भी होना, ये अज्ञानता के लक्षण है। तो इन 20 लक्षणों को देखकर हम देखें कि हम में कितने ज्ञानी हैं और कितने अज्ञानी हैं, अमानित्व। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की शरण का जो विधि है, जो प्रोसेस है, स्टार्ट कैसे होता है, निर्माण मोहा जित संग दोष, मान की इच्छा से मुक्त हुए बिना आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। वन हू एक्सपेक्ट्स ऑनर कैन नेवर सरेंडर, प्रभुपाद जी परपट में शिष्य को कैसे मिलते हैं। तो मान की इच्छा रखना अज्ञानता का लक्षण है, और निर्माण होना, और जब तक हम मान की इच्छा रखेंगे तब तक दम, दर्द, क्रोध और फिर कठोरता, हार्शनेस हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में रहेंगे। तो इस कारण से हमारे से वैष्णवों के प्रति अपराध होते हैं। जितने भी प्रकार के अपराध हैं, चाहे वो नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, या जीव अपराध है, इन सब के पीछे ये प्रोसेस काम करता है। और सबके पीछे अज्ञानता, और अज्ञानता का अर्थ है हमारी भौतिक धारणाएं, मटेरियल कंसेप्शन। और हम भौतिक धारणा, हर चीज को भौतिक ले लेते हैं, है ना। हरि नाम नामी से अभिन्न है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये सच्चिदानंद है, कृष्ण चैतन्य रस पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। लेकिन रोज हरि नाम लेते हैं हमें तो ऐसा लगता नहीं है। शुरू शुरू में हम सुनते हैं, जब कोई प्रवचन सुनते हैं, किसी वक्ता सुनते हैं चैंटिंग के बारे में, एक दिन दो दिन हमारी कुछ चैंटिंग क्वालिटी इंप्रूव करने का हम प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल वैसे का वैसे। भक्तों को इतनी महिमा सुनते हैं, वैष्णव को इतनी महिमा सुनते हैं, फिर उनको हम नॉर्मल लेना शुरू कर सकते हैं कैजुअल। गुरु को इतनी महिमा सुनते हैं, फिर गुरु को साधारण मानना शुरू कर सकते हैं। आर्ट्स वगैरह को जब तक बाहर से देखते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बाहर जाके श्रृंगार करते हैं तो वही कपड़े उतारते हैं, वैसे ही धार धार किया, साफ किया, चलो लगा दिया, पेंट चुप रहे, कोई बात नहीं, कैसे साधारण। आर्ट्स वगैरह को साधारण मानना, गुरु को साधारण मानना, शास्त्रों को साधारण मानना, नाम को साधारण मानना, भक्तों को साधारण मानना, ये मटीरियल कंसेप्शन। हर वस्तु को हम मटीरियल, प्रसाद को साधारण मानना, जबकि ये सब दिव्य है और ये सब भगवान की अतिशय कृपा है हमारी चिंता को उठाने के लिए। लेकिन जैसे हम इनको भौतिक मानना शुरू करते हैं, हम इनसे वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। और हमारे मन की असीमित क्षमता है किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को वो भौतिक बना देगी। कोई भी आध्यात्मिक वस्तु आप ले आइए, माइंड हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी टू मंडेनाइज एवरीथिंग। स्वयं कृष्ण भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, शुरू शुरू में अच्छे लगे बाल ऐसे खड़े रहते हैं क्या है, फिर उसमें तो टेढ़े सीधे तो खड़े हो जाओ भाई, ऐसे खड़े हो, और ये कौन सा श्रृंगार है, सर पे मोर पंख लगा रहे मंडेनाइज। ये इस ऐसे जो कपड़े भगवान डालते हैं, कोई जाके मार्केट में जा सकता है, तो हर चीज बहुत भौतिक लगनी शुरू हो जाएगी, साधारण लगनी शुरू हो जाएगी, और इसलिए हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं उनके साथ में डील करने में, व्यवहार करने में। तो इस भौतिक धारणाओं के प्रति बहुत जागरूक रहना है कि हम किसी भी इन दिव्य वस्तुओं को भौतिक ना समझें, बहुत सावधानी बरतें। तो अब इसका रेमेडी क्या है, तो जैसे बोला है ये श्लोक था, दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पारिश। अब इसके कोई भी हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे हरि नाम को भव औषधि बोला गया है, तो इस ट्रीटमेंट करने के लिए एक जो अच्छा डॉक्टर होगा वो तीन तरह से ट्रीटमेंट करेगा। पहले तो इमीजिएटली जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, उसको ठीक करेगा, सिम्टम्स को ठीक करेगा। दूसरा जड़ में जाएगा, और तीसरा आपको बोलेगा कि ऐसा लाइफस्टाइल आप फॉलो करो जिससे मेरी दवाई असर करे, ठीक है ना। यही होता है ना, हमारे कई लोग अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ले रहे हैं ट्रीटमेंट, तो वो सर दर्द पेट दर्द भी ठीक करता है, पेट भी साफ करता है, और अंदर एकदम घुस रहा है, लीवर को भी ठंडा कर रहा है, पेट को भी ठंडा कर रहा है, और एक लाइफ स्टाइल बता रहा है, केवल बॉइल्ड वेजिटेबल खाइए, दिन में खाली दो चपाती खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, बस लाइफ स्टाइल। अगर वो तीनों करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। और एक वैद्य है जो बोलता है कि इनमें से कुछ भी ठीक नहीं किया तो मेरी दवाई इतना खतरनाक हो जाएगी, कोई एलोपैथी ना आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बचा नहीं पाएगा आपको, तो अति आवश्यक है। इसलिए इस भव औषधि का पूरा लाभ उठाने के लिए तीन चीज़ों को करते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है, रूट में जाना, सिम्टम्स को ठीक करना, और लाइफ स्टाइल फॉलो करना। तो क्या है इसका सिम्टम क्या है अपराध का, पारुष्य में हो जाए हार्शनेस, तो इस सिम्टम्स को ठीक करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में कठोरता ना लाए, कुछ भी हो जाए वैष्णव सदाचार का पालन करें, वाणी पे कंट्रोल रखें। बहुत ही जगह बोला जाता है बंदा मन का साफ है लेकिन वाणी का बुरा है, जवान का खराब है, मन बोल देता है लेकिन मन का बड़ा साफ है। वैष्णव समाज में ये नहीं चलेगा, प्रभु मन का साफ होगा, उसमें बचपन से ही आदत है, ये नहीं चलेगा। माइंड मत करना, मैं बोल देता हूँ कुछ भी लेकिन अंदर से प्रभु साफ। कठोरता कहीं नहीं होनी चाहिए, ना वाणी में ना व्यवहार में। तो ये अब सिम्टम हो गया ऐसे, तो बोले अब कब तक रोकेंगे ऐसे क्रोधा दिखाने, चुप चुप गुस्सा नहीं दिखाना, बोलना नहीं है, एक दिन ढाम करके फूटेगा ना, विस्फोट होगा, उल्टी आ जाएगी सारी, कब तक रोके रहेंगे करके। और जब उल्टी आएगी सबने बोले क्या क्या खाया आपने, ना अच्छा ये खाया था, ये खाया था, ये खाया था, पनीर खाया था हमने, तो वॉमिट भी नहीं होने देना चाहिए। कि जैसे ही उल्टे शब्द बोलेंगे मतलब कि वॉमिट करना यानी बोलना, तो लोग समझ आएंगे आपके हृदय में क्या है। लेकिन हृदय को भी साफ करना है तो रूट पे भी अटैक करना पड़ेगा, अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, वैष्णव के महत्व को समझना पड़ेगा। याद रखें स्वदृक, हम अपना भला खुद देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बोलते हैं जब किसी के अंदर के दोष हमें मोहित कर रहे हो, हमें भटका रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रखो, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाओ और अपने दोषों को देखो। दूसरों के दोषों से आपको इतनी हानि नहीं होगी जितने आपके अपने दोषों से आपको हानि होगी। अरे दूसरा नियम तोड़ रहा है, मदिरा पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, इससे आपकी भक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपके दोष आपको ज्यादा भक्ति में बाधा डालेंगे। तो इंट्रोस्पेक्टिव होना, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना, वैष्णव अपराध के सीरियसनेस को समझना, वैष्णव की महिमा को जानना, ये रूट वे करने वाला अटैक है। और बाहर सिम्टम्स को हम कैसे कर सकते हैं कि वाचो वेगम, तभी रूप गोस्वामी जी डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ने सबसे पहले बोला वाणी के वेग करो उनको। बहुत बड़ा जहाज है उसमें छोटा सा छिद्र हो गया, गए, एक उल्टा सीधा शब्द मुंह से निकल गया वो वापिस नहीं आ सकता, एक गलती से निकला हुआ शब्द बहुत गंभीरता से संभाल के, खासकर जिसकी जितनी ज्यादा जिम्मेवारी का ओहदा है, उत्तरदायित्व है, उसको उतना ज्यादा सावधान होना चाहिए अपने व्यवहार में, अपने डीलिंग्स में। और साथ में लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल ये है कि हम भक्तों का वाणी पे वेग लगाना है, उनकी निंदा कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या खूब गुणगान करें, आदत देखें, किसी को अच्छा करते हुए देखें उसका गुणगान करें, भक्तों की खूब सेवा करें। शिला भक्ति सांसवर्धन महाराज ने अपने मठ में नियम बनाया था कि प्रत्येक भक्त अपने गुरु भाइयों के, कम से कम 3 गुरु भाइयों की व्यक्तिगत सेवा करे प्रतिदिन, कुछ ना कुछ थोड़ा सा मौका देंगे, किसी कुछ कपड़ा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु देखते थे किसी के कपड़े धो दिए, किसी के कपड़े उन्होंने तैयार लगा दिए, कोई लेकर जा रहा है उसका सामान उठा के साथ में चल पड़े, कोई मौका देखे, कुछ भी किसी भी ढंग से हम गुरु भाइयों के जो अपने साथ के हैं उनके कुछ ना कुछ 3 गुरु गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स की हम सेवा करें, और कम से कम 2 या 3 भक्तों का प्रतिदिन हम गुणगान करें। ये प्रैक्टिस, ये लाइफस्टाइल है, यू नो। और किसी को जज ना करें, अपराध करने से पहले उनकी मानसिकता होती है कि मैं इससे बेहतर हूं, और फिर हम उसको जज करना शुरू करते हैं। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बताया था, ग्रामे कथे ना सुने में, ग्रामे कथे ना बोले में, ज्यादातर अपराध हमसे कम होते हैं जब हम कैजुअली खड़े होते हैं, हंसी मजाक में किसी भी भक्त वाले कुछ भी बोलते हैं, चलो भैया चलता है, और अपने हंसते हंसते कुछ भी कह दिया, सुन लिया, चलता है, मजाक मजाक। और कई बार तो भक्त लोग जान जाते हैं इसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, इसकी उससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, अब इस भक्त को खुश करना है तो कैसे किया जाए, सबसे पहले आके उस भक्त को थोड़ा सा बता दिया, प्रभु जी आजकल ऐसा कर दिया, अरे वो तो है ही ऐसा, अच्छा प्रभु जी हाँ साइन कर दिया, हृदय प्रसन्न कर दिया उसका, कईयों के हाथ में टूल होता है, दे थ्राइव ऑन दिस, उनको अच्छा लगता है, समझ में आना चाहिए क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, कौन किसका कहां से, किसका कहां से, किसका कहां से, उसके आगे वो बात बता दी, उसके आगे उसको माँ बाप बता दिए, प्रभु जी ऐसा हो रहा था, अरे यार मैं तो परेशान हो गया, बाप तो बोलो इतने महान है कैसे आप सब कुछ सह रहे हैं, क्या करूँ, गुरु महाराज का आदेश है, बता क्या करना है, मजाक नहीं करें, हमने होते हुए देखा और खुद करते भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि अंदर तक चली गई है बात, ये इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया हमारा, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया, इससे भक्ति थोड़ी पड़ेगी, हमारे काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट आगे पहुंच भी जाएगा, लेकिन होगा नहीं कुछ। फिर हमारे अंदर टेंडेंसी होती है, प्रभु जी चैतन्य चैतन्य में पढ़ते हैं, उसने अपराध किया, उसका नाक कट गया, उसको लकवा हो गया, उसको गोड़ हो गया, यहां तो कुछ होते ही नहीं, और खुद को लगता है यार 25 साल हो गए निंदा करते हुए, बल्कि क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है मेरा, पहले सेक्रेटरी था, कमांडर था, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अब मैं आरसीबी जीपीसी में भी जा रहा हूँ, और चारों तरफ मेरा दबदबा है, लोग डरते हैं मुझसे, खुलेआम निंदा करता हूँ, तो खुलेआम या जो है मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, खुलेआम करता हूँ जो मर्जी है, और एग्जाम्पल भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देखते हैं, बंदा धड़धड़ पड़ी जा रहा है, तो धड़ाधड़ उसको प्रणाम हो रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं उसके, ये है क्या, ये साइंस क्या है, पढ़ते क्या है, दिखाई क्या दे रहा है, क्या है, तो वास्तव में हमारा विश्वास ऐसा होता है, सब कहने सुनने की बात है, अपराध तो अवॉइड करना प्रैक्टिकली नहीं है, इसलिए ज्यादातर जब नाम अपराध बोले जाते हैं, आदि लगते सुन ही नहीं होते, कोई जब कर रहा होता है, कोई कह रहा होता है, कोई ऐसे वेट कर, जल्दी यार फिनिश कर, कोई बोलता है ना 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 ना, सीरियसली लेते हैं तो प्रैक्टिकली नहीं है, तो ऐसे ही बताया गया। तो एक बार राधानाथ महाराज से प्रश्न पूछा किसी ने कि जो अपराधी उसको अपराधों में से देखते हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है अपराध करने के लिए, और कोई एग्जांपल भी नहीं हमारे सामने, ऐसे उन्होंने बोला कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, समझ लें क्लास में एक स्टूडेंट है हमेशा फर्स्ट क्लास फर्स्ट 99% लाता है, उसके थोड़ी सी उसे कमी हो जाए तो क्या करेंगे क्लास टीचर उसको समझाएंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए, स्कूल में तुम्हें टॉप तुरंत उसको करेक्ट कर देंगे। और एक व्यक्ति है हमेशा ही 35-36% में पास हो रहा है, बहुत समझाया उसको मानता ही नहीं है, तो कोई भी उसको तो ध्यान नहीं देता, चलने देता, उसको पास तो करना ही नहीं, फेल ही होना है। तो ऐसा हो गया, कृष्ण हमसे फेडअप हो गए, ये लोग इतना अपराध करते हैं, इतना अपराध करते हैं, इनको अल्टीमेटली रिजल्ट आना तो है नहीं, उन्होंने भगवत धाम में कई जन तक करेंगे श्रवण के, पता नहीं कब इनका शुद्धिकरण होगा। कृष्णा डजंट टेक एनी पर्सनल इंटरेस्ट, चल रहे हैं रूटीन में चल रहे हैं, लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तुरंत उनको सिग्नल आता है, वैष्णव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से तुरंत, जैसे रूप गोस्वामी जी तुरंत लीला स्मरण भंग हो गया। हम लोगों को पता है कितने कोई मजाक उड़ा रहे होंगे, कितने हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही जब में सोते हैं फिर भी सोएंगे, वैसी कथा में कोई रुचि नहीं, वैसी कथा में कोई रुचि नहीं है। तो देखना चाहिए अपनी प्रोग्रेस, देखे वही का वही जब के बची रुचि नहीं, वही का वही वैष्णव के प्रति कोई रुचि नहीं, वही अर्थ विग्रह से कोई आकर्षण नहीं, वही कोई धाम से आकर्षण नहीं, कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा। अभी इसी समय हम अपने आप को सुधार सकते हैं, कोई और नहीं सुनाने का आएगा, हमें ही इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। तो ऐसे संघ से बचे, और किसी को भी हम जज ना करें। इसके महात्मा प्रभु ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, पढ़ी आप लोगों से किसी, कितने लोगों ने पढ़ी है, ज्यादा लोगों ने पढ़ी है, और ये आपसे शेयर करने वाली बात, बहुत सुंदर कविता है, हम अपने आश्रम में लगा रखा था, उठा के ले जाए इसको। इस कविता का नाम है आई वॉज शॉक्ड, माता बोल रहे इंग्लिश में कविता है, बोले जब मैं गोलक के दरवाजे पर गया, द्वार पर, मैं शॉक हो गया, ये नहीं कि गोलक के ऐश्वर्य को देखकर, ये देखकर ऐश्वर्य हुआ ना कि इसकी सुंदरता को देखकर, गोलोक वृंदावन धाम के अंदर भक्तों को देखकर मैं शॉक हो गया कि ये कैसे, सबको तो मैं मिला था पृथ्वी पर, मेरे साथ ही थे और किसी के अंदर भी भक्ति तो थी नहीं ज्यादा, कैसे यहां पहुंच गए भाई, ये संगीतन लीडर था, ये पैसे खा गया था, ये प्रेसिडेंट था, कभी भी सही व्यवहार नहीं किया उसने, और ये कृष्णदास कभी प्रीचिंग नहीं की, कभी सिंसियर नहीं, कैसे आ गए, तो फिर इसी ढंग से वो शौक खड़े थे, तो गुरु महाराज भी थे, मैंने गुरु से पूछा कि क्या हो रहा है भाई, किसी से गलती हुई है लगता है मुझे कुछ ना कुछ, और सब कुछ एकदम चुप क्यों हो गए, एकदम शांति, गोलक धाम में शांति एकदम, क्या हो रहा है। गुरु ने बोला क्यों शांत है, दे आर क्वाइट प्रभु, बिकॉज वो भी शौक में है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप आ जाओगे। जैसे आप हैरान हो उनको देखकर, वो भी हैरान है आपको देखकर, ये कहां से आ गया। वैसे ही होगा, हम अक्सर बोलते हैं जब गोलक धाम जाने की लिस्ट आउट होगी ना, तो ऐसे सब शॉक हो गए, अरे ये माता जी ये तो थैला लेके आती थी खाली प्रसाद के लिए, अरे प्रभु जी कहां गए, बड़े बड़े प्रवचन देते थे, इनका नाम ही है प्रभु जी, और माता जी वो चले गए सब, ये तो जब में सोते थे, ये तो मंगला के लेट आते थे, हम ऐसे जज करते हैं एक्सटर्नल से, ताकि भक्ति बहुत इंटरनल है। जब हम शिमशुर में आते थे, मैं याद है मंगल आरती में महीने में एक या दो बार आता था, एक काशी बड़ी मुश्किल से उत्साह बढ़ाते हैं और आता था, मैं एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, वो मुझसे लेट आते थे, मेरा इतना अहंकार बढ़ जाता है, ये देखो कहने को इतने वरिष्ठ है, मुझसे भी लेट आते हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं इतने सीनियर होने के बाद, ऐसे अहंकार बढ़ जाता है। कहीं से हमें ये आइडिया आ जाए कि मैं इससे बेहतर हूँ, बस उसी में संतुष्टि हो गई और हम जज करना शुरू कर देते हैं, हमें क्या मालूम किसकी क्या हालत है, किसकी क्या कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग से वो कैसे फाइट कर रहा है। भगवान ये देखते हैं कि रजोगुण और तमोगुण में होते हुए कौन कितना प्रयास कर रहा है। सुबह जल्दी उठने वाले तो बहुत है, सुबह जल्दी उठ के लोग व्यायाम भी करते हैं, उनकी आदत है, आ जाती है सुबह मंगल आरती, सुबह जल्दी उठ के सोना थोड़ी है कि जो मंगल आरती थोड़ा लेट होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हो गया, कोई मतलब नहीं है उसको, भक्ति बहुत इंटरनल है, बहुत इंटरनल है। तो ऐसे ही हाल था, सबको देखकर शॉक हो गया, ये तो सोता था, ये सिंसियर नहीं था, ये पैसे खा गया, ये नियम नहीं पालन करता था, वो पहले पहुंच गए और वो उसको देखकर शॉक है, क्या हो रहा है। तो महात्मा प्रभु लिख रहे हैं कि केवल मंदिर में आने से कोई भक्त नहीं बन जाता, जैसे कोई गैरेज में खड़े होने से कार नहीं बन जाएगा, और मंदिर कोई संतों का म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम क्या बोलते हैं, संग्रहालय। देखो जी, देखो इस संत को देखो, ये 20 साल तक एक रंग में खड़े हुए तपस्या की। इन संत को देखो, रोज 1:30 बजे उठ के जप करते हैं। इन संत को देखो, ये कुछ खाते ही नहीं है। इन संत को देखो, खाली पानी पे है। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए मंदिर को, म्यूजियम, हर एक कोई अपना अपना एक उदाहरण हो कुछ। नहीं, बोल रहे हैं मंदिर तो एक अस्पताल है पतित जीवों के लिए। इसको देखो, ये पहले चारों नियम तोड़ता था, इसको देखो क्या क्या कचड़ा हुआ इसका जीवन, ये है। और अब देखो क्या प्रयास कर रहे हैं, अपन ऐसे देखते हैं। इस पूरी मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा, फिर हमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा। Every saint has a past and every sinner has a future. हर एक संत का इतिहास होता है और हर एक पापी का उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। हमारे हाथ में है कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ेंगे। भक्तिलता बीज तो ब्रह्मांड प्रमेत कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई। भक्तिलता बीज, भक्तिलता बीज हमें प्राप्त हो गई, अब इसको हैंडल कैसे हम कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। और मध्वाचार्य जी बताते हैं कि अगर कोई भक्तों से संग करना सीखता नहीं है और बार बार वही गलती करता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं स्वयं उसके भक्ति के मार्ग में सारी अटकलें डालूंगा। आई पर्सनली पुट ऑल ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ दिस डिवोटी। जो सीख नहीं रहा तक भक्तों से डील कैसे करना। इसलिए इसके ज्ञान को हम समझें। और बहुत सरल जीवन है, पर कितने ही उदाहरण है हमारे पास। दुर्वासा मन इतने बड़े योगी थे, अपने योग शक्ति से वैकुंठ तक चले गए कि वहां भी उनकी वैष्णवता से कोई रक्षा नहीं कर पाए। सारी योग शक्तियां, सारी तपस्या, सारी साधना धरे के धरे रह जाएगी इस वैष्णव अपराध के आगे। तो इस पूरे दृष्टिकोण को हमें बदलना होगा और सही भक्तों को संग करना होगा। ऐसे भक्त जो गप मारते हैं, प्रजल्पा करते हैं, वैष्णव निंदा में रुचि रखते हैं, एक्सपर्ट है, उनको हमें दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। दूर से का संग करना बहुत खतरनाक है। अपनी रक्षा हमें खुद करनी है, अपना भला हमें खुद करना है। और एक बिजनेसमैन जैसे बिजनेस माइंडेड होते हैं, वैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें बिल्कुल बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, समय बहुत हो गया। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेम दूंगा, लेकिन उसकी एक ही उसके ऊपर कंडीशन है कि वो किसी की निंदा ना करे। अगर वो किसी की निंदा नहीं कर रहा और हरे कृष्ण भगवान का जप कर रहा है तो निश्चित रूप से मैं उसको कृष्ण प्रेम दूंगा। तो ये बातें सुने, इस पर चर्चा करें, इसका मनन करें, वैष्णव सदाचार का सदा पालन करें और प्रार्थनाएं करें तो हम इसमें गंभीरता बनाए रख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच सुंदर अच्छा मिली मुझे। प्रजेश ने बताया कि निंदा करना है अंदर सुनना जहर पीने के समान है, लेकिन ना चाहते हुए कई बार जैसे गुजरते हुए किसी ने मुझसे सुन लेते हैं निंदा, तो फिर उसका क्या, कैसे उसे बचें या उसको सुनने के बाद कैसे क्या।
एक बार मोहन बोल से प्रश्न पूछा था कि निंदा सुननी पड़ जाती है, तो बोले ऐसे ही भाव जैसे प्रेशर लगे हो आप किसी मीटिंग में भी बैठे हैं और आपको प्रेशर लग गया तो बोले एक्सक्यूज भी करके भाग जाओ, किसी की नहीं सुनोगे, तेजी से भाग जाओ। और हमसे कोई जूनियर कर रहा है, हमारे में इतनी शक्ति है तो उसको हम चुप करा सकते हैं या बात को डाइवर्ट कर सकते हैं। नहीं सकते तो चलता आ रहा है, चलता
सब लोग साथ में चलते हैं, कैसे कौन किस लेवल पे मान रहे हैं, और हो सकता है जिसको हम मान रहे हो या नियमों को पालने को सबसे पहले गोरख पहुंच जाए, जैसे ये बता रहे हैं मानो हम नहीं जानते नेवर नो। सो जस्ट जितना हमारा इन्फ्लुएंस है उस पर हम फोकस करें, ठीक है। बाकी प्रश्न बाद में कर सकते हैं। आप सब प्रतिमा बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना करते हैं हम राधा राधिका मोहन जी के और कृष्ण भगवान जी के चरणों में हमें इतनी शक्ति दें कि हम सब भक्तों की सेवा कर सकें और वैष्णव प्राण से बच सकें। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जगत कोटि वैष्णव।